ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पोलैंड के वॉर्सॉ पहुंच गए हैं। श्री मोदी का वॉर्सॉ सैन्य हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जाम साहिब नवानगर स्मारक और मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक और कोल्हापुर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री मोदी वॉर्सॉ में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रस्थान से पहले कहा कि पोलैंड भारत का मध्य यूरोप में एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए भारत और पोलैंड की प्रतिबद्धता दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करती है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी पोलैंड यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन यात्रा के बारे में कहा कि वे राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जा रहे हैं। वर्ष 1992 में द्विपक्षीय संबंध शुरू होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। उन्होंने क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की वापसी की आशा व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि वे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उभरता अफ्रीका और तेजी से बढ़ता भारत विकासशील देशों के बीच सहयोग को गति दे सकता है। आज नई दिल्ली में भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलीकरण तेजी से हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस सम्मेलन का विषय एक भविष्य का निर्माण भारतीय सभ्यता के लोकाचार में गहराई से अंतर्निहित है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेलिफिन ने आतंकवाद और उग्रवाद के दुष्प्रचार के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ भारत सम्मेलन में श्री डेल्फिन ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने में यूरोपीय संघ के पास लंबा और पर्याप्त अनुभव है। पूर्व विदेश सचिव और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ कंवल सिब्बल ने उम्मीद जताई कि ऑनलाइन आतंकवादी सामग्री पर दो दिन की ये चर्चा काफी सार्थक रहेगी। देश भर में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर के 10 करोड़ छोटे खुदरा विक्रेताओं की बेहतरी के लिए परस्पर सहयोग के प्रयासों पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं का अभी भी एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जरूरत है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने रेजिडेंट डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। एम्स ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि ये रिजर्व बैंक में उनके नेतृत्व और देश की आर्थिक वृद्धि दर तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए उनके कार्यों को प्रमाणित करता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।